For us foreigners, the glory of India is in its spirituality. The glory of India is the words of the sages. The glory of India is the knowledge which is found here and is available nowhere else in the world. And the Western countries have advanced so much technologically. But why is it that giving up the comfort of modern life and the facilities of technology, some foreigners come to India and accepting a loincloth, live in a very simple way? Why is it? Because technology did not feed us what was meant to be our life. Technology did not give us ultimate happiness. Technology did not give us the freedom that we wanted. We broke all the boundaries. We rejected religion. We rejected morality. We rejected everything. But instead of finding freedom, we found further boundaries. You have just seen this beautiful drama on the three modes of nature. So this is what happens when we reject all good advice. We get bound in another way of life, but we do not find freedom. So the wealth of a human being is its intelligence. So we have come here to give you a simple message. It's be intelligent. We are hearing nowadays that there is an hemorrhage of the Indian brain. What is the hemorrhage of the Indian brain? All the youth of India who is qualified is leaving India and going to Western countries to make a successful life. It's contributing to the development of Western countries instead of contributing to the development of India. So intelligence is the main factor in human life. And intelligence means the power to discriminate. The power to discriminate between what is right and what is wrong. And only when we have that intelligence, we will achieve freedom, happiness, and love. These things are not achieved through competition or sparada. These things are not achieved through the gratification of the senses. These things are not achieved by exploring relationships. The modern civilization is based on temporary relationship. Just as the bees enjoy flowers. In the modern world, human beings enjoy each other, one after the other. But is it love that they find? No, it is not love. It is simply a sensual experience which does not give ultimate satisfaction. So ultimately, to be intelligent and to be able to discriminate, one should know all the different parts of the puzzle. One should have complete information. Then with all information, one can discriminate and decide what to do in one's life, in which way one should go. And that is why we are having this festival of the heart, to give this information which is lacking, to give you the chance to hear about the missing link. What is the missing link? What is that one thing which is not taught in the colleges? What is that one thing that even our parents are very reluctant to give us? Because that one information is the secret of freedom. And with that one information, we will cut all boundaries. And that information is that within this body, there is a spirit spark. There is a song. That song is the source of all life. And that information today you should take from this festival. And you should understand that the source of joy is in the soul. The source of joy is the interactions of the soul with the Lord and with others on the spiritual platform. Spirituality does not mean to sit in a dark room and do nothing. It does not mean to practice austerities. Spirituality is full of joy. As you experience here, when we dance in Kirtan, spirituality is full of happiness. It is the way to freedom. It is the way to satisfaction. So if you have any ounce of intelligence, please accept this knowledge that we are desiring to share with you. Take that knowledge. You are not this body. You are the soul. And the goal of life for a human body is definitely to succeed. And what is the success? The success is to realize oneself and to become really, really a tree for humanity. A tree that distributes the sweet fruits of spiritual knowledge and spiritual happiness. So this is all what I want to tell you tonight. I hope that some of you will understand that message. While you are taking up modern life, do not give up those spiritual values. Because if you do, India will end up a mad country. Like there are already so many mad countries. So please take up this opportunity to get a glimpse of this knowledge and enjoy to the greatest extent you can while dancing in Kirtan. And remember that this dancing is not the same as the dancing you enjoy in the disco, because its source is different. This dancing is not stimulated by the music. This dancing is stimulated by the mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So I hope that amongst you, many seekers of freedom are there. And if you want further direction on how to achieve that freedom, then please come to the organizers of this festival and take up the reading of spiritual books. Make your life successful, really successful. Be rich and happy, not just rich and mad. Hare Krishna.
Hare Krishna. So I would request His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj to come on stage, please. And now there is going to be a question answer round. So whosoever is having their questions regarding spirituality, their life and their career, please come up with that. I guess you have already given to our boys. And so, the questions are ready? Okay. Please, Mataji. Please come and actually, we need your help so that you can read the questions and
question to Mataji.
So,
Krishna,
So here there is going to be a question answer round. So one question is going to be with his name is Bhakti Charu Swami Maharaj, and the other question, the second, so that we can do like alternatives.
Before that, I'll just take a few minutes. How did you all like Prashanta Mataji's lecture? Wasn't it brilliant? How many of you think it was a brilliant lecture? So let's... And I was actually telling Suvarsham, of course, I can understand that he's under a lot of pressure and he's not able to take care of everything properly. But there has been a very big mistake. Before Prashanta Mataji came to speak, she should have actually been properly introduced. Don't you want to know who she is? Wouldn't it have been better that you got to know who she is before she started to speak? Anyway, after you heard her speak, yes, after you heard her speak, then you got to know already who she is. Didn't you? Huh? At least you got to see what a brilliant personality she is. Prashanta Mataji, in course of her lecture, she just mentioned that she is from France. I will just give a little introduction to Prashanta Mataji. There was one piece of paper, someone just showed it to me about Prashanta Mataji. Or rather, Chan Prabhu, why don't you? Or do you have the points there? The Prashanta Mataji's introduction? Yeah, okay. Give it. First of all, I'll say also that I'm sorry that although I know Prashanta Mataji for last 20 years almost. 25 years. But I still never really tried to get to know who she actually was. I know who she is, but I didn't know who she was. She's from France. One thing I know is that she was a very progressive-minded girl. How old were you at the time when you joined ISKCON?
24.
She was just a 24-year-old young girl. Which year was it?
1984.
So 1984, she came to India. Where did you meet ISKCON devotees?
First time in Paris, 1979, and I joined in Greece, 1984.
Wonderful. So she got to know the ISKCON devotees in 1979 in France, but she actually joined ISKCON movement in Greece in 1984. And then when did you come to India?
1987. As a devotee.
And since then you never left?
No.
So that shows she just fell in love with India. Why do you like India so much?
Because Indian people are very nice.
And one thing I can tell you, that Indian people think that you are very, very nice.
Now Maharaj is getting embarrassing now.
And since they actually, she mentioned that I know her for about last 25 years, and I have seen her as a very, very committed devotee. This shows that she has really understood the depth of Indian spiritual culture, which again she herself mentioned in course of her lecture. And personally I feel that it is important that the Indian youth get to hear this message from a personality like Mother Prashanta. Because what Indians are trying to aspire for, she was born in there, she was brought up in that culture, and she rejected that and came to India. Now tell me, isn't it a clear indication that there is nothing to aspire for in the West? What will be your response to that?
Well, there is nothing to aspire for in simply materialistic civilization. Just to pursue material goals is not sufficient for a human being. Animals themselves pursue material goals. They try to be as happy as they can. So human beings are not happy just with material achievements. And the proof is that in America and other countries, many other countries nowadays, the number one disease of the modern man is actually mental disease, because people are so dissatisfied that either they have mental disease or they commit suicide. We know in Western countries suicide is very common, depression is very common, and seeing a psychiatrist is one man out of four or five is followed by a psychologist, because materialistic ways of life do not give what a human being actually needs.
Yeah, very, very true. How did you like the drama on the mode of three modes of material nature? Very nice. And what is the message that you got from that drama? The message was clear, isn't it? Mode of passion and ignorance simply leads you to distress. But mode of goodness takes you out of this distressful situation. Now, when you think of West, what picture you get of the West? What is the predominant mode in the West? In the Western countries, in Europe and America, which modes are predominant there? Passion and ignorance. You see, passion and ignorance interchange. Like, in mode of passion, you become very active. In the mode of passion, you work so hard during the day. And then, at the end of the day, what happens? You become tired and enter into the mode of ignorance. Then again, you wake up in the morning and again you start to work in the mode of passion. And again at night you fall asleep or get drunk in the mode of ignorance. Oh, Hindi mein, acha. आप सब तो अंग्रेजी में बोलते हैं और जब हमारा बोलना को आता है तो आप बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं. I was thinking that Shubhal Shyam was making all the announcements in English. And, okay, I'll try. प्रशांत माता जी ने क्या बोल रहे हैं आप समझे हैं? अच्छा माता जी क्या कह रहे हैं? भारत के नौजवान लोग सब क्या चाहते हैं? अमेरिका और यूरोप जाके रुपया कमाएंगे, है ना? और इसलिए क्या हो रहा है? भारत का ब्रेन ड्रेन हो रहा है. भारत के सब नौजवान अब जो क्रीम ऑफ इंडियन सोसाइटी हैं, वो लोग सब भारत छोड़ के यूरोप और अमेरिका जा रहे हैं, है ना? जो नौजवान है उनका सपना क्या है? भारत में रहकर भारत का वाणी का प्रचार करें या भारत के आध्यात्मिक जीवन के अनुसार अपना जीवन का तैयार करें या विदेश में जाके रुपया कमाएं? सच्ची बताइए आप क्या है? तो सब चाहते हैं, बहुत सारे आदमी चाहते हैं कि विदेश जाके रुपया कमाएंगे. बल्कि प्रशांत माता जी ने कह रहे हैं कि विदेश में, मतलब यूरोप अमेरिका में कुछ नहीं, आप सोचते हैं वहां जाकर मजा मिलेगा रुपए से आप बहुत कुछ खरीदेंगे, बल्कि असल में क्या हो रहा है, वहां मनुष्य ने इतना डिप्रेशन में भोग रहे हैं कि चार आदमी में से एक आदमी को साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर अपना दिमाग को सीधा करने के लिए दवाई लेना पड़ता है। तो ये है वहां का हाल। इसलिए जो बुद्धिमान है, विचारवान है, तत्वज्ञानी है, उन लोगों ने क्या कर रहे हैं, भारत के जो आध्यात्मिक संपदा है उसको ग्रहण करके उसके अनुसार अपना जीवन बनाने का तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं कह रहा था कि जो ये थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के आधार पर जो ड्रामा हुआ था वो आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। तो वो ड्रामा से आपको क्या संदेश मिला है? रजोगुण और तमोगुण से कष्ट ही मिलता है। रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से तदा रजस्तमो भावा कामो लोभ दयाश्चेति। काम लोभ आदि, मतलब काम लोभ मद मोह और मात्सर्य, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसका ही विस्तार होता है, ये बढ़ता है, इसका प्रभाव के द्वारा हम प्रभावित हो जाते हैं। और इस सिलसिले में मैं बोल रहा था कि रजो और तमोगुण का परिवर्तन होता है, रजो से तमो में जाता है, तमो से फिर वापस आता है रजो। रजो से जैसे सुबह से हम रजोगुण के प्रभाव से शाम तक बहुत सारे काम करते हैं, रजोगुण के प्रभाव से बहुत कष्ट उठाते हैं, नौकरी करते हैं या रुपए कमाने का धंधा करते हैं, वो सब के किस गुण के प्रभाव से हो रहा है? रजोगुण के प्रभाव से हो रहा है। और रजोगुण के प्रभाव से दिन भर काम करने के पश्चात शाम को क्या होता है, हम थक जाते हैं और तमोगुण के प्रभाव से हम सो जाते हैं निद्रा। रजोगुण के प्रभाव से हम सक्रिय होते हैं और तमोगुण के प्रभाव से हम सो जाते हैं। रात को सोने के पश्चात सुबह क्या होता है, फिर हम उठ जाते हैं, उठ के रजोगुण के द्वारा हम प्रभावित होते हैं। तो ऐसे रजो तमो गुण का चक्कर में हम फंस जाते हैं। बल्कि चेत एतैर अनाबिद्धं स्थितं सत्ये प्रसीदति। जब हमारा चेतना सत्वगुण के द्वारा प्रभावित होता है तभी केवल हम रजो और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर आध्यात्मिक मार्ग में आने का अवसर प्राप्त होते हैं। तो प्रशांत माता जी ने कह रहे थे कि अमेरिका यूरोप में क्या कौन गुण की प्रभाव है, रजोगुण का और तमोगुण का प्रभाव है। और भारत में कौन गुण का प्रभाव होना चाहिए था, भारत सत्वगुण के द्वारा प्रभावित है, बल्कि आज भारतवासियों ने पश्चिम के अनुकरण कर रहे हैं, इसलिए भारत भी रजो और तमोगुण के द्वारा प्रभावित हो गया है। और रजो और तमोगुण के प्रभाव से क्या होता है, कष्ट क्लेश कठिनाई। तो ये क्लेश से मुक्त होने का तरीका है सत्वगुण, जिस गुण के द्वारा भारत स्वाभाविक रूप से ही प्रभावित था और भारतवासी ने स्वाभाविक रूप से ही सत्वगुण के द्वारा प्रभावित है। और यहां इस विषय में प्रशांत माता जी ने कह रहे थे कि भारत का महिमा केवल यहां का जो प्रकृति का सुंदरता में नहीं है केवल। हां, भारत एक बहुत सुंदर देश है, भारत का प्रकृति, भारत का वातावरण बहुत सुंदर है, बल्कि भारत का संपदा केवल वही नहीं है,
भारत की असल संपदा है, भारत की आध्यात्मिक ज्ञान। तो इस ज्ञान जो आपको जन्म सूत्र से, उत्तराधिकार सूत्र से आप प्राप्त हुए हैं, उसको अपनाना चाहिए और उसका पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू माधव कृष्ण।
थैंक यू महाराज।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो अब आप सभी के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर मिलेगा। एंड
how the thing goes. If the question is in English, I'll give the answer in English. Mm-hmm. And we can interchange. Madam Prashant also can give some. Yeah.
Hare Krishna. According to the modes prescribed by you, why would we not resort to passion, i.e., instead of goodness, even though this passion gives us more pleasure than goodness? In English.
Yeah, mode of passion, the pleasure that you get out of mode of passion is only short-lasting. For example, in the mode of passion, you play a game. For how long can you play the game? Say you love to play tennis, or maybe even better, you love to play cricket. Right? For how long can you play cricket? 5 hours, 6 hours? Uske baad kya hota hai? Thak jate hain. So ye kehna tha, that is the point I was trying to make. That you cannot stay in the mode of passion for very long. From mode of passion automatically leads to mode of ignorance. Mode of passion mein aap karya karte hain, jaise khelte hain, football khelte hain, cricket khelte hain, tennis khelte hain, khelne mein acha lag raha hai, balki kitne tak, 2 ghanta, 3 ghanta, uske baad kya hoga? आप तमोगुण में अब सो जाएंगे। नहीं तो तमोगुण का और एक प्रभाव दिखाया गया था, कि दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। हाँ किए हैं बहुत सारे, 2 घंटा 3 घंटा आप खेल कूद में थे, उसके बाद जाके बियर पीते हैं या शराब पीते हैं। बल्कि सत्वगुण जो है, सत्वगुण का स्थिति साधारणतया इट्स लास्टिंग। इन सत्वगुण यू रिमेन सिचुएटेड एंड दैट गुण, दैट इज व्हाट द रियल प्लेजर दैट यू डिराइव आउट ऑफ योर स्पिरिचुअल एक्टिविटी। से फॉर एग्जाम्पल you can become active in some games or things, but that you can be active only for a short while. But when you become active in Krishna conscious activities, then, like for example, when you chant, for how long can you chant? You can chant throughout the day, you can chant throughout the night. Thank you.
Hare Krishna. How can we be satisfied in life?
Mother Prashant can answer that question.
How can we be satisfied in life? Hindi mein kahiye Mother ji se bol do. How can we be santushti kaise honge?
Jeevan mein kaise santusht reh sakte? So, jeevan mein kaise santusht reh sakte hain? सबसे पहले समझना ही चाहिए कि हम कौन हैं, संतुष्टि किसके लिए होती है। संतुष्टि इंद्रियों की संतुष्टि होती है, मन की संतुष्टि होती है, लेकिन उसके आगे भी आत्मा की संतुष्टि होती है। जो व्यक्ति आत्मा संतुष्ट है तो उनके पास सबसे बड़ी संतुष्टि होती है, क्योंकि जब इंद्रियों में संतुष्टि होती है तो
इंद्रियां राजसिक होते हैं, राजगुण में होते हैं. सो यह संतुष्टि समाप्त हो जाती है, हमेशा के लिए नहीं रहती है. तो संतुष्टि हम इसे इस प्रकार की संतुष्टि चाहते हैं जो बहुत गहरी है, और इस प्रकार की संतुष्टि आ जाती है सिर्फ जब हम समझते हैं और इस जीवन के लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं. संतुष्टि अर्थात जो हमेशा हमारे पास रहता है, इस प्रकार का सुख, इस प्रकार की सफलता जो आगे आगे हमारे साथ रहती है, तो इससे संतुष्टि होती है. तो संतुष्ट रहने के लिए कई लोग हमेशा सोचते हैं कि जो भी इच्छाएं मन में आ जाते हैं उसकी पूर्ति करने से संतुष्टि आ जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं होता है. भागवत गीता में कृष्ण समझाते हैं कि संतुष्टि इंद्रियों तृप्ति से नहीं होती है, और मन की इच्छाओं, मन की आकांक्षाएं को संतुष्ट, कोशिश की संतुष्ट करने के लिए ऐसे संतुष्टि नहीं मिलती है. संतुष्टि कब मिलेगी? जब सारे भौतिक इच्छाएं शांत हो जाएंगे, और जब हमारी इंद्रियों इतना भोग करेंगे जितना आवश्यक है हमारे शरीर के लिए. तो यहाँ असली संतुष्टि है जब हम अंदर अंदर से समझते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा जीवन का क्या लक्ष्य है, तब संतुष्टि आ जाती है. जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं, समझकर कि सबको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, जब हम समझते हैं कि इस दुनिया के पीछे एक ही बुद्धि है, एक ही व्यक्ति है जिनका नाम भगवान हो सकता है, गॉड हो सकता है, फादर हो सकता है, जो भी, लेकिन जब हम समझते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं होते और इस परम व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं, तब संतुष्टि आ जाती है. आयु उसको कहते हैं आत्मा संतुष्टि, न इंद्रियों की संतुष्टि, न आकांक्षाओं की संतुष्टि.
कृष्णा, हरे कृष्णा. एक निवेदन है सभी उपस्थित भक्तों से जो पीछे खड़े हुए हैं, अगर आप कुछ समय के लिए सिर्फ आधा घंटा के लिए आप बैठेंगे और अपनी बातचीत न करके इन चीजों को सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा. ये ऐसे प्रश्नों के उत्तर हैं, ऑडियंस ने इतने सुंदर क्वेश्चन हमारे पास भेजे हैं, अगर संभव हो सकता हो तो सब प्रश्नों का उत्तर देते तो शायद सारा ज्ञान स्पष्ट हो जाता आपको. और बहुत बार हमने इस प्रकार मनोरंजन किया पिकनिक में जाके, लेकिन अभी आप यहाँ आई हैं इस पांडवसेना यूथ फेस्टिवल में, तो थोड़ा और एडवांटेज दीजिए, कृपया अपनी चर्चा में करके चर्चा को सुनिए, ये कितनी सुंदर बातें आपको जानने को मिलेंगी. बहुत सुंदर क्वेश्चन आए हमारे पास, इसलिए बहुत बहुत आनंद हो रहा है हमको देख के.
I always do hard work, but I haven't got success yet. Why?
प्रश्न पूछा है कि मैं हमेशा बहुत कठिन परिश्रम करता हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती, आखिर क्यों, मैं क्या करूँ?
कठिन परिश्रम करना ही, hard work alone is not enough. You have to understand what you should do first. Like, you know, of animals, donkeys are famous for their hard working ability to work hard. Now, is it worthwhile to work like a donkey? Why does a donkey work so hard, you know? Donkey works so hard carrying such big burden just to get a little grass. The grass is everywhere. Ghas har jagah mein hai. Balki gadha sochta hai ki agar kaam nahi karega to ghas nahi khane ko milega. तो हार्ड वर्क ही केवल जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए.
किस कारण वर्क करना चाहिए ये सोचना चाहिए। जब सही काम होता है तो मन का संतुष्टि भी होता है, जैसे माता जी ने अभी अभी बताया। जो भला काम जो है दूसरे के लिए, कल्याण के लिए अगर आप काम करते हैं तो उसके द्वारा हमारा कल्याण होता है और दूसरे का भी कल्याण होता है। वो जो हार्ड वर्क है वो दैट इज डिजायरेबल, वो वांछनीय होता है। तो हमको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि कैसे काम हमें करना चाहिए, और सबसे बेहतर काम कौन से काम है, भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा जब आप करते हैं तो भगवान उसको उसको देखकर भगवान उसको इनाम देते हैं। जब आप कोई भले आदमी के लिए काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, आप उनके लिए जो कुछ किए हैं उसके लिए वो आपको आभारी रहता है। तो वैसे ही जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भगवान आभारी बन जाते हैं। भगवान तब सोचते हैं ये भक्त मेरे लिए इतना कुछ किया है तो हमको भी अब उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसे जब भगवान जब सोचते हैं मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, तो आप सोचिए, यू कैन वेल इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ रिवॉर्ड गॉड विल गिव यू। देयरफॉर इट इज वेरी गुड दैट यू आर वर्किंग हार्ड, बट माय एडवाइस विल बी, माय रिक्वेस्ट विल बी, प्लीज वर्क फॉर कृष्णा एंड यू विल सी हाउ वंडरफुली कृष्णा विल रिवॉर्ड यू।
Prashanta Mataji, now question, what do you mean by reincarnation? Punarjanm se aapka kya arth hai?
Punah janma. Punah janma, reincarnation. Punah janma hone ke liye atma hona chahiye. Punah janma artat ki हर एक शरीर में एक आत्मा है, और जब शरीर रुक जाता है जिसको कहते हैं मृत्यु, जब मृत्यु होती है वो ये आत्मा जो शरीर से अलग है आगे चले जाता है। शरीर में शरीर वास्तव में शास्त्रों में कहते हैं शरीर एक आवरण है, आत्मा के ऊपर दो आवरण है, एक स्थूल शरीर जिसको हम दर्पण में देख सकते हैं, शीशा में देख सकते हैं, सुबह सुबह उठ के हम शीशा में देखते हैं, और कौन देखते हैं, मैं, और प्रसन्न हो जाते हैं। उस सुंदर सुंदर व्यक्ति का अभिषेक करते हैं, उस सुंदर सुंदर व्यक्ति को सजाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार कराते हैं, खिलाते हैं, और खाने के बाद बाहर जाते हैं उसकी महिमा दूसरों को समझाने के लिए। वही है जो हम सोचते हैं मैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक आवरण है, और सबको पता है कि अंदर इस शरीर के अंदर मन भी है, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर है, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी। तो मन की वजह से सुख दुख, अनेक प्रकार की इच्छाएं, अनेक प्रकार के वेग, कभी चाहते हैं कभी नहीं चाहते हैं, द्वेष है, काम है, ये सब मन में रहता है। तो मृत्यु का समय स्थूल शरीर बंद हो जाता है किसी डिसफंक्शन की वजह से, या लीवर का प्रॉब्लम है, या ब्रेन का प्रॉब्लम है, या हार्ट का प्रॉब्लम है, या सब एक प्रॉब्लम है बहुत सारे, तो शरीर बंद हो जाता है। उस समय शास्त्रों में कहते हैं कि
कि जो भी मन की स्थिति होती है उस समय उसके अनुसार अगला जन्म बांधता है आत्मा का. जिसका स्मरण हम करते हैं इसकी इस स्मरण के अनुसार हमें दूसरा शरीर मिलता है. यदि हम मृत्यु के समय किसी सुंदर सुंदर बिल्ली का स्मरण करते हैं, क्योंकि घर में बिल्ली रखते हैं और बहुत प्यारी है, माओ माओ, तो यदि बिल्ली का स्मरण करेंगे तो अगले जन्म हम भी माओ माओ करेंगे. यदि हम किसी सुंदर सुंदर पुरुष का स्मरण करेंगे मृत्यु के समय तो अगले जन्म पहलवान.
हरे कृष्णा, मदर प्लीज अभी प्रसाद शुरू नहीं करिए, सभी लोग को प्रसाद मिलेगा. अभी बहुत जोरदार कीर्तन, सबको नाचना भी है, सब रखा बहुत बहुत मीठा मिलेगा, बहुत टेस्टी प्रसाद है. आज भी कल भी बहुत टेस्टी प्रसाद उन्होंने कहा था, तो ये सभी वहां व्यवस्था में लोग ध्यान दें. जय भगवान गौरी प्रभु, जाके देखो आप लोग हनुमान प्रभु, मतलब देखो प्रसाद अभी शुरू नहीं करें. अभी कार्यक्रम का बहुत सुंदर भाग और भी चल रहा है यहाँ, सब लोग ध्यान से सुनिए प्लीज. अभी प्लेस नहीं दी थे किसी को भी, कृपा करके थोड़ी देर देखिए. आपको सबको कीर्तन का बहुत आनंद आएगा, जिसके लिए आप लोग आए साथ में, जिसके सुनिए.
ठीक है, तो स्मरण के अनुसार यदि हम किसी सुंदर सुंदर स्त्री का स्मरण करेंगे मृत्यु का समय, तो अगले जन्म अति अति सुंदर स्त्री का शरीर मिलेगा. तो स्मरण के अनुसार, जिसका अर्थ है कि जब शरीर बंद हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर आगे चलता है, और इस सूक्ष्म शरीर का स्मरण, इस सूक्ष्म शरीर की स्थिति के अनुसार एक फिर से दूसरा शरीर बनता है, फिर से किसी माँ की पेट में प्रवेश करते हैं, उसको कहते हैं रीइंकार्नेशन. और कितने कितने जन्म होते हैं, असंख्य जन्म होते हैं, 84 लाख योनियों में हम जन्म ले सकते हैं. और जब मनुष्य का जन्म मिलता है तो अवसार है, सुअवसार है, यह बात समझने के लिए और इस जन्म मृत्यु का चक्र रुखाने के लिए.
सुंदर प्रश्न है गुरु महाराज के लिए. मुझे आपकी संस्था बहुत अच्छी लगी, मुझे भी आपकी संस्था में सेवा का मौका दें, अतः मुझे आपकी संस्था में जुड़ना है, तो जरूर कांटेक्ट करें. मेरा फोन नंबर 9586102750 महेश पीटीओ अजेंद्र महेश माली.
हरे कृष्णा महेश जी, बहुत धन्यवाद. एंड वी विल कॉल यू and we will be very happy to have you with us.
Unhone apna number diya,
give that number and Radha Charan Prabhu, you will make a phone, you will phone me.
Yeah, Guru Maharaj ke liye hai. How can I control myself when I am surrounded by material opulences? Condition.
When I am surrounded by
material opulences.
Material opulence.
Number one condition, those things do not belong to me. Second thing, I do not desire all those things. But still, it fascinates me. Instead of doing sadhana, I feel I am back to pavilion. Nirdosh. Nirdosh. Shakti. This is Shakti. How can I control myself when I am surrounded by material opulences?
Yes. So, it's very important. Question is in English. It's very important to maintain proper association. If you remain in the association of right people, then you will be in right consciousness. So you may be in the middle of opulences, that's no problem. But if you're surrounded by right people, then you will understand
that this opulence is meant for glorifying Krishna. This opulence is meant for serving Krishna. So in this way you can properly utilize that opulence. But if you are in a wrong association, then you will become degraded. Actually, the right association will elevate you and a wrong association will degrade you. So where you are, that is not the criteria. The important factor is what kind of association you are in. Therefore, I will request you to always remain in the good association, right association, sadhu sangha. Remain in the association of devotees of Krishna, then you will develop the right consciousness. Opulence is not so important because Vaikuntha is full of opulence. Spiritual world is full of opulence. It's nice to be in the middle of opulence. Krishna is the richest person. Therefore, Krishna is surrounded by all kinds of opulences. And when you become a devotee of Krishna, then you will be also surrounded by all kinds of opulences. But the problem, the point is that when you remain in the association of devotees of Krishna, you will learn how to be Krishna conscious and take advantage of the situation that you are in. Thank you.
Hare Krishna. Now for the Mataji, Prashanta Mataji. What is law of nature? What is ISKCON? Or ISKCON society ka mukhya hetu kya hai?
The first one was, what is laws of nature?
Ek hi vyakti ka question paper hai pura. What is law of nature? Prakriti ka niyam kya hai? ISKCON kya hai? Or ISKCON ka mukhya hetu kya hai?
Laws of nature. Laws of nature is tit for tat. Tit for tat. जो भी हम करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है. That is the laws of nature.
As you sow, so shall you reap.
Yes. बीज डालते हैं जमीन में, बीज के अनुसार पौधे आ जाते हैं. यदि आम का पौधे डले हैं तो फिर आम का पेड़ आ जाएगा. So that is the laws of nature. Actually, वैसे बहुत सारे laws of nature होते हैं. Law of gravitation, गुरुकर्षण, law of gravitation, अनेक प्रकार के laws होते हैं. और ये laws क्या प्रमुख गुण है कि उन laws को कानून जैसा है, उसको नहीं तोड़ सकते हैं. That is the main aspect of the laws of nature. Laws of nature हम नहीं तोड़ सकते हैं. जिन्होंने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है. जब जरा मौसम आ जाती है तो ठंडी आ जाती है. सो जब बारिश की मौसम आ जाती है तो पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं. देयर आर द लॉज ऑफ नेचर. हर एक चीज के अनुसार उसका फल मिलता है. सो दीज आर द लॉज ऑफ नेचर. दीज लॉज ऑफ नेचर इस संसार में हमको बंधन में रख देते हैं. तो ISKCON ऐसी संस्था है जो हम इन बंधनों से मुक्त करा सकते हैं. एक आध्यात्मिक आंदोलन है जिसकी मूल भारत में है. ISKCON एक वैष्णव संप्रदाय का एक शाखा है. वैष्णव संप्रदाय अर्थात कि हिंदुइज्म में, जिसको हम आजकल कहते हैं हिंदुइज्म, अनेक अनेक प्रकार के सिद्धांत होते हैं हिंदुइज्म में. हिंदुइज्म में कई लोग अनेक अनेक प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं. हिंदुइज्म में कई लोग निराकार मानते हैं, कई लोग शून्यवाद मानते हैं. और वे लोग जो इस दुनिया में भगवान को मानते हैं और जिनकी भगवान की पूजा करते हैं, जो समझते हैं कि जीवात्मा और भगवान दोनों के बीच में एक नीचे संबंध है, प्रेम का संबंध है,
कि भगवान का एक दिव्य धाम है जो जिस जहां हम जा सकते हैं मृत्यु के बाद, तो उन लोगों को कहते हैं वैष्णव, जो विष्णु की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं। तो ऐसे संप्रदाय होते हैं इंडिया में, और हम कह सकते हैं कि ऐसे वैष्णव संप्रदाय अर्थात जो गुरु शिष्य परंपरा जो ज्ञान देते हैं और भगवान की सेवा सिखाते हैं, तो क्रिश्चियनिटी के बराबर है या इस्लाम के बराबर है। मतलब एक परमेश्वर में श्रद्धा है, एक परमेश्वर को मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसी इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसका मूल एक वैष्णव संप्रदाय में है, गौड़िया ब्रह्मा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है। और श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन का संस्थापक आचार्य है, उन्होंने ऐसे प्रचार विदेश में किया और इस प्रचार आधुनिक समाज में फैलाने के लिए उसका प्रसार करने के लिए उन्होंने एक संस्था बनाया जिसका नाम है इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, आत्मा का खोज करने के लिए संस्था है।
हरे कृष्णा, गुरु महाराज जी कृष्ण है। पांडव सेना की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, ये विचार कैसे आया, इसके बाद उसमें साथ में हाउ कैन बी ज्वाइन टू योर ग्रुप,
हाउ कैन यू ज्वाइन
योर ग्रुप,
योर ग्रुप
हिंदी में।
हरे कृष्णा, इन 1992-93 इन इंग्लैंड, in London, North London, our society was facing some difficulty. Is it all right if I speak in English?
Yes.
Yeah? Okay. So, in London, we had some difficulty because our temple in London, Bhakti Vedanta Manor, was going to be closed by the local council. The local council did not want ISKCON to be there. This Bhaktivedanta Manor was a very beautiful property which was given to Srila Prabhupada by George Harrison, the Beatle. And that area, the Hartmere Council, the Lechmore Heath village, is a very posh area, is a very affluent area. Rich people live there. And they did not like ISKCON, a Hindu organization, to be there. So they influenced the local council to close down ISKCON. And so naturally, we started to protest to prevent that effort of the local council to close ISKCON down. And there was a demonstration in front of the parliament. And in that demonstration, thousands of Indians participated. But the police was quite aggressive. The police was quite brutal. And at that time, the youth of London temple, a group of young boys and girls, they wanted to create a team who will fight the police. And so that is how they're young boys, and they were very, very upset that the police were treating the devotees in such a harsh way, the manhandling the devotees. Therefore, they thought that we have to create a Kshatriya group to fight the police and to protect the devotees. So that time I was quite involved with London Temple, and I got to know about that.
So when I got to know about that, then I, at that time I called those boys. And I told them that in the age of Kali, Chaitanya Mahaprabhu did not want us to resort to violence. Chaitanya Mahaprabhu wanted to win everything, win all the opposition and counteract all the adversaries through Krishna consciousness. In this age of Kali, violence will simply breed more violence. But we have to have a Krishna conscious way. The Krishna conscious way is the only way. That means we depend upon Krishna and try to do everything for the sake of spreading Krishna consciousness. So this is how in 1993 the Pandav Sena started in London with a group of about 25 young boys and girls. But today we have more than 500 active boys and girls in Pandav Sena. And this group also has the same principle has been adopted in other parts of the world also, like in America and in India also, in Surat. Shubharsham had been inspired by the same ideology and the principles, and you can see how actively they have become involved in spreading Krishna consciousness. And the main objective of the Pandav Sena is to motivate the youth to spread Krishna consciousness. And if you want to join Pandav Sena, you can contact the Pandav Sena devotees here. Who should they contact to join Pandav Sena? Subharsham is one person, and Vimal, Vivek, Ashish.
The boys with the t-shirt.
Yeah. Why they are not wearing the black t-shirt?
Today is white. Yesterday was black.
Oh, today is white. Yesterday was black.
All are black. White today.
Okay. Black was beautiful.
Actually, after joining this ISKCON movement and Pandav Sena, they have become bright faces. No.
Now they, from mode of ignorance, they came to mode of goodness.
In one day, in one night, by this wonderful festival. So, बहुत बहुत आनंद है हम लोग को हमारे पास आप लोग के पास से कम 100 से 150 क्वेश्चंस आए हैं और ये इस बात को शो कर रहा है कि आप सब लोग कितने विचारवान हैं विचारवान व्यक्ति पूछता है और प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं मतलब हमें बड़ी कठिनाई हो रही थी सोचने में कि हम बहुत कम प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पे समय नहीं इतना ये बड़ी कठिनाई हो रही थी और एक एक प्रश्न भी हम ले रहे हैं एक लास्ट प्रश्न है तो नाउ वी शुड स्टॉप द क्वेश्चन ओके अभी आप लोग के कई लोग क्वेश्चन बाकी रह गए लेकिन निराश नहीं होइए आपके हर प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल प्रमाणित उत्तर है कुछ उत्तर आपको मिलेगा इसके लिए हर शुक्रवार को बटार रोड में आरा स्विच के ऊपर उसका हॉल का नाम मंगलदीप अपार्टमेंट में वहां पे एक नंदिनी योग के नाम से एक हॉल है उसमें प्रोग्राम होता है हर शुक्रवार को शाम को 8:30 से 10:30 तो आप सबके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आराम से वहां पे इसके बारे में आपको पुस्तकें भी मिलेंगी जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और आपको रूबरू में प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आप निराश नहीं होइए जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं आप अभी यहां भी संपर्क कर सकते हैं हम लोग यहां भी आपको उत्तरों में सहायता करेंगे आप रेगुलरली आइए प्रोग्राम में लाभ लीजिए और आप लोगों में इतनी जिज्ञासा है ये बहुत खुशी की बात है अब इसके बाद यहां पे और कीर्तन होगा केक कटिंग होगा एक मूवी दिखाई जाएगी इसका आनंद लीजिए तो हम सभी महाराज जी का गुरु महाराज का प्रसन्नता माता जी का हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ये बड़ा सुंदर तरीके से हमारी चिंताओं को दूर कर देने आपने सहायता किया अभी किसी को जाने नहीं देंगे, अभी सब कहते हैं कि मूवी दिखाई जा रही है, फिर कीर्तन होगा, केक कटिंग होगा, एंड वन ऑफ द अदर थिंग इज लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ ऑल्सो मूवी विद दैट लकी गाय टूडे 1 2 3
Oh, I said, those are your questions.
Thank you.
You join?
This is your second.
What do you do?
BCA.
BCA, correct?
Yeah. Okay.
Which year?
First year.
Very good. Surat Meerat.
Left, Hare Krishna. Right him, not with left is. Okay.
Hare Krishna. Prakash Prabhu.
Hare Krishna.
Hare
Krishna. How was my gift?
Very nice. Thank you. You are very talented.
What are you doing?
Oni, both of them.
हरे कृष्णा, जो लोग ये चाहते थे कि पांडव सेना कैसे स्टार्ट हुआ, हम लोग क्या करते हैं पांडव सेना में, तो दिस इज अ स्मॉल मूवी जो हमने बनाया है कि हम लोग एक साल में क्या क्या एक्टिविटी की है हमने, उसके ऊपर ये मूवी है, तो प्लीज सब लोग देखें इसे।
वॉल्यूम के लिए